आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, प्राकृतिक खेती में एमपी बना देश का नंबर वन राज्य। प्रदेश में आज से शुरू होगा गेहूं उपार्जन। किसानों को 2700 रुपए प्रति क्विंटल भाव देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। और आज से पोषण पखवाड़े की होगी शुरुआत। बच्चों के दिमागी विकास और सही खान पान पर रहेगा जोर। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बीते कल जबलपुर में कृषि मंथन कार्यशाला के जरिए प्रदेश के अन्नदाताओं को 23 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के नवीन प्रशासनिक भवन और स्वचालित तरल जैव उर्वरक केंद्र का लोकार्पण करते हुए खेती को लाभ का धंधा बनाने का संकल्प दोहराया। डॉ. यादव ने स्पष्ट किया है कि मध्य प्रदेश अब प्राकृतिक खेती में देश का नंबर वन राज्य बन गया है।
मुझे इस बात का गर्व है, पूरे देश के अंदर खेती में सर्वाधिक तेज गति से बढ़ने वाले राज्य में मध्य प्रदेश का स्थान आया है। हमें इस बात का आनंद, मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी संभावना है। यद्यपि हमने छलांग तो लंबी लगाई, लेकिन और संभावना भी है जिसपे काम करना है। हमारे मेहनत के किसानों ने अपने सारे संसाधनों के बलबूते पर अब अपने मध्य प्रदेश को दलहन में नंबर वन का स्थान दिलवाया, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सबसे ज्यादा प्राकृतिक खेती किसी राज्य में होती है तो मध्य प्रदेश में होती है, इस बात का भी आनंद हमारे बीच।
इसके साथ ही श्री यादव ने दुग्ध उत्पादन को 9 से बढ़ाकर 20% करने और स्कूल के बच्चों को निःशुल्क दूध देने की घोषणा की। आज से शुरू हो रहे गेहूं उपार्जन के लिए भी सरकार ने किसानों को 2700 रुपए प्रति क्विंटल तक भाव देने की अपनी प्रतिबद्धता जताई है। राज्य में आज से गेहूं खरीदी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी उपार्जन केंद्रों पर किसानों के लिए सहज और सुगम व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश दलहन और तिलहन के साथ साथ अब गेहूं उत्पादन में भी देश का नेतृत्व कर रहा है। केंद्रों पर पहुंचने वाले किसानों को न केवल अपनी फसल बेचने की सुविधा मिलेगी, बल्कि उन्हें शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से भी अवगत कराया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ मौसम 2026 के लिए फास्फेट और पोटेशियम उर्वरकों पर 41,534 करोड़ रुपए की पोषण आधारित सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस फैसले से किसानों को रियायती, किफायती और उचित कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने बताया कि सब्सिडी पिछले खरीफ मौसम में दी गई सब्सिडी से 4,317 करोड़ रुपए अधिक है। सरकार ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से टोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर को भी स्वीकृति दी। इसमें 36 स्टेशन होंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि इस परियोजना पर 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि समिति ने पूर्वोत्तर राज्यों में 2 जल विद्युत परियोजना को भी मंजूरी दी।
नॉर्थ ईस्ट में 2 हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, बड़े पावर प्लांट्स हैं। एक कमला हाइड्रो पावर प्लांट है, ये 1720 मेगावाट का है, 26,000 करोड़ का है। दूसरा कलई 2, ये 1200 मेगावाट का है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी देने के लिए केंद्र का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर कीमतें बढ़ने के बावजूद इस फैसले से किसानों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। प्रदेश में मनाए जा रहे किसान कल्याण वर्ष के बीच ये कदम खेती की लागत कम करने और अन्नदाताओं की आय बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। असम, केरलम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान शुरू है। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 सीटों और पुडुचेरी की 30 सीटों पर एक ही चरण में मतदान हो रहा है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और शाम 6 बजे तक चलेगा। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल नई दिल्ली में पश्चिम एशिया घटनाक्रम पर मंत्रियों के समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री सिंह ने बताया कि बैठक के दौरान पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के मद्देनजर उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए युद्ध विराम का स्वागत किया है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी ब्रीफिंग में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इससे पश्चिम एशिया में स्थायी शांति स्थापित होगी और हॉर्मुज जलडमरू मध्य से निर्बाध नौवहन और वैश्विक व्यापार जारी रहेगा।
भारत हमेशा से ही शांति के पक्ष में रहा है। हम शांति के हर पहल का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि पश्चिम एशिया की यह पहल यूक्रेन में भी शांति बहाल करने के प्रयासों को प्रोत्साहित करेगा।
प्रदेश में आज से 8वें पोषण पखवाड़े का औपचारिक आगाज हो गया है। 23 अप्रैल तक चलने वाले इस अभियान का मुख्य फोकस बच्चों के शुरुआती 6 वर्षों में उनके मस्तिष्क के अधिकतम विकास पर है। आज प्रदेश भर के आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण पर चर्चा के साथ समुदाय को इस मुहिम से जोड़ा जा रहा है। वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर बच्चों के 85% दिमागी विकास को सही दिशा देने के लिए इस बार स्क्रीन टाइम कम करने और खेल आधारित शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। अभियान के दौरान दादी नानी के अनुभव साझा किए जाएंगे और 30 अप्रैल को पोषण मेले के साथ इसका समापन होगा। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती प्रक्रिया को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और कर्मचारी चयन मंडल से जवाब तलब किया है। आखिर 800 से अधिक पदों पर केवल महिलाओं को ही 100% आरक्षण के आधार पर दिया जा रहा है। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने पुरुष अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा कि क्या ये लिंग आधारित भेदभाव नहीं है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि समान योग्यता होने के बावजूद पुरुषों को आवेदन से रोकना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। इस महत्वपूर्ण मामले की अगली सुनवाई अब 15 अप्रैल को होगी। आईपीएल क्रिकेट में कल रात दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 1 रन से हरा दिया। 210 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग मंत्री उदय प्रताप सिंह आज आगरमालवा जिले के दौरे पर रहेंगे। वे यहां विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। रायसेन जिले में दशहरा मैदान में 11 से 13 अप्रैल तक भव्य उन्नत कृषि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को पारंपरिक खेती के साथ साथ डेयरी, पोल्ट्री, मत्स्य और बकरी पालन जैसे क्षेत्रों से जोड़कर उनकी आय बढ़ाना है। सतना जिले में सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने जिले के 37 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कटनी जिले में औद्योगिक विकास को नई दिशा देने और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने की पहल के तहत कलेक्टर आशीष तिवारी ने प्रमुख औद्योगिक इकाइयों का भ्रमण किया। खंडवा कलेक्टर ने कल खालवा विकासखंड के ग्राम रोशनी, मोहालखारी और अम्बाड़ा का दौरा कर जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत संचालित कार्यों का निरीक्षण किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।